اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف بھی کہتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں کھایا کہ ان کے درجہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا اجر رکھا ہوا ہے.
جی السلام علیکم عمر بھائی, آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟
ہاں جی
جی جی ابھی ماشاء اللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے آیات کو جوڑا ہے. جس طرح سے آپ یہ آیت شروع ہوئی تھی, اوپر بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے, ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا عہد ہوا تھا اور انہوں نے کس طرح عہد کی پاسداری بھی کی, اور جب جب عہد کی پاسداری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک سوال بھی تھا لاسٹ ٹائم میں, اس کو ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس میں یہ تھا کہ بنی اسرائیل تو قرآن نہیں پڑھتے تو ان کو کیوں مخاطب کیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی دیکھیں سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ہے وہ اس میں ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے خدن للناس, اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے خدن للناس, سورہ بقرہ کی شاید آیت نمبر 87 ہے, تو اس میں یہ آتا ہے کہ جو قرآن ہے وہ خدن للناس یعنی تمام انسانوں کے لیے, یہ کسی مذہب کے لیے مخصوص نہیں, یہ کسی طبقہ یا فکر یا کسی مکتبہ فکر کے لیے مخصوص نہیں ہے, بلکہ یہ پوری کائنات کے لیے ایک کتاب نازل کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر قوم کو مخاطب کرتا ہے. اور بنی اسرائیل کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت عطا کی, اور ایسی فضیلت عطا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال قرآن پاک میں بار بار بیان کرتا آ رہا ہے, اور ہمیں ان کے ذریعے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم نے وہ فضیلت اگر ان کو بھی ملی تو وہ ہر اس قوم کو مل سکتی ہے جو قرآن کی ہدایات پہ عمل پیرا ہوگی. اور ان کو کرنا کیا ہوگا, ان کو اپنے عہد کی پاسداری کرنی ہوگی, انہیں صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنا ہوگا, ان کو ایک لبادے سے الگ الگ کرنا ہوگا, انہیں مکس اپ نہیں کرنا, اور ان کی جو سزات ہے ان کا جو رکوع ہے ان کے جتنی بھی معاملات ہیں وہ سب اللہ کی خشیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جو خوبصورتی سے آپ نے یہ مثال دی تھانے والی, وہ بہت زبردست مثال ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں پولیس آئے گی تھانے میں جائیں گے تو کیا ہوگا, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہمارا وہ خوف اتر جاتا ہے. تو یہ وہ خشیت کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اس کی سزا یا اس کی جزا ملے گی, تو پھر ہمیں خشیت کا درجہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خوف جو ہے خوف لاعلمی کا نتیجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, کیونکہ مجھے اس کو ٹیکل نہیں کرنا آتا, مجھے اس کے پتہ نہیں اس کے بارے میں کہ میں کیسے اس چیز کا معاملہ کروں. یا جیسے میں بات کرتا ہوں, اگر میں سوئمنگ نہیں کرتا یا کر سکتا ہوں اور مجھے لگے کہ پتہ نہیں یہ کتنی بڑی لہر ہے, اتنا بڑا سمندر ہے, میں اس میں ڈوب نہ جاؤں, تو یہ میرا خوف ہے. لیکن جب میں اس میں جاؤں گا اور اس میں میں تیرنا سیکھ جاؤں گا تو یہ میری خشیت ہوگی کہ میں اس میں آگے جاؤں یا نہ جاؤں. تو یہ جو درجات ہیں یہ ہمیں آہستہ آہستہ علم کے ساتھ ملتے ہیں, اور وہ علم کون سا ہے, وہ اللہ کا کائناتی علم ہے جس میں جزا اور سزا کے ساتھ قانون کو جوڑا گیا ہے نا. تو یہ خشیت کا ایک پہلو ہے. اور دوسرا میں اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہوں گا زن کے بارے میں. اس میں ماشاء اللہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس کو, کہ زن جو ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت بیان کی ہے انسانوں کی, کہ انسان گمان کرتا ہے, اور گمان اچھا بھی ہوتا ہے گمان برا بھی ہوتا ہے. تو گمان اٹس سیلف کوئی بری یا اچھی چیز نہیں ہے, اسے ہم اچھا یا برا بناتے ہیں. قرآن اسے سوء ظن یا حسن ظن کہتا ہے. سوء ظن وہ بد گمان ہے اور حسن ظن وہ اچھا گمان ہے. اچھا اس کی میں جو مثال ایک مجھے جس سے سمجھ آئی نا, میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں آپ اس پروگرام کے توسط سے, کہ جب ہم پلین میں سفر کرتے ہیں, اب جو پائلٹ ہے میں اسے نہیں جانتا, مجھے صرف یہ پتا ہے کہ اس کے پاس ایک ڈگری ہے, اس کے پاس ایک تجربہ ہے, ایئر لائن نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے, اس کو ویریفائی کیا ہوا ہے, تو میں اس کے بارے میں مکمل سکون میں آ جاتا ہوں. مجھے تسلی ہوتی ہے کہ اس ایئر لائن نے جو پائلٹ چنا ہے وہ اچھا ہی ہوگا, تو میرا سفر بہت خوشگوار گزر جاتا ہے. لیکن اگر میں ایک لمحے کو یہ سوچوں کہ یہ پائلٹ پتہ نہیں کون ہے, ایئر لائن نے اس کا ٹیسٹ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا, پتہ نہیں یہ بندہ سو کے صحیح آیا یا نہیں آیا, اس نے کھانا بھی ٹھیک کھایا یا نہیں کھایا, یہ نشے میں تو نہیں ہے, تو حالانکہ وہ کر وہ سارے کام ٹھیک رہا ہوگا, لیکن میری جو فلائٹ ہے وہ خراب ہو جائے گی, میرا جو جرنی ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زن جو ہے وہ ہمارا ڈسائڈ کرے گا کہ ہماری زندگی کیسے چلے گی. اور اللہ کے بارے میں جو زن ہے اس کے بارے میں سورہ صافات کی آیت ہے, آیت نمبر غالباً میں نکالتا ہوں, آیت نمبر 87 ہے, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 85-87 ہے کہ اس قول علی ابی ہی و قوم ہی ماذا تعبدون, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کیا پوچھتے ہو, افکن آلیہ تن دون اللہ تریدون, کیا بہتان ہے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے اور خدا چاہتے ہو تو تمہارا کیا گمان ہے؟ مطلب یہ تھوڑا سا آیت کا ترجمہ مکس اپ ہوا ہے کہ اس کو میں آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو، تم ان کو خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو، یہ تو عفق ہے، یعنی یہ تو ایک ایسی بات ہے جو من گھڑت ہے. اور اس کے بعد آتا ہے 87 میں کہ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا اپنے رب العالمین کی طرف کیا ظن ہے کہ تم اس کی طرف کیا منسوب کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، اور وہ اسی کی طرح تمہارا معاملہ ہوگا. جو تم اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو، جو تم اس کے ساتھ سوچتے ہو، اسی کی طرح تمہارا معاملہ کیا جائے گا. اور اللہ جو ہے اپنے معاملے کے بارے میں بہت ہی عادل ہے اور بہت ہی انصاف پسند ہے. وہ کسی کے ہاں سفارشیں نہیں پسند کرتا، کسی فرقے کی وہ حمایت نہیں کرتا، کسی قوم کی حمایت نہیں کرتا، کسی مذہب کی حمایت نہیں کرتا. وہ صرف اصول اور تعلیمات ربی کی حمایت کرتا ہے کہ جو ان قوانین پہ عمل کرے گا جو قرآن یا دوسرے صحائف یا دوسری کتب میں موجود ہیں، جو ان کے مطابق عمل کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے مطابق اس قوانین کے مطابق فیصلہ کرے گا. اور یہی ہمیں اللہ کے لیے زن رکھنا چاہیے. اور یہی میرا خیال ہے کہ اس آیت میں بھی جو آپ نے پیش کی ہے کہ وہ جو زن رکھتے ہیں ان کا زن یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کے سامنے موجود ہوں گے، ان کا القاء ہوگا، وہ ملاقات کریں گے القاء کے ذریعے. اور القاء ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے، یعنی جس میں فوجیں آمنے سامنے ہوں تو اس کو بھی القاء کہا جاتا ہے نا، کہ اس میں ملاقات کا یہ عالم ہے. اور وہ اس چیز کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ کے ہاں جانا ہے تو ہمیں اس کے قانون کو ہی اپنی ذات پہ اور اس دنیا میں لے کے چلنا ہوگا تاکہ ہم وہ نتائج پیدا کریں جو کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ نتائج دنیا کے سامنے موجود ہو، جس کی وجہ سے قوموں کو فضیلت ملی. اور وہ فضیلت ہر انسان اور ہر قوم کو دینا چاہتا ہے، لیکن وہ ملے گی ان کو، ان انسانوں کو اور ان اقوام کو جو اللہ کے قوانین پہ عمل کریں گے. اور یہ آج ہم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اتنا عادل ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ پیچھے ہیں، لیکن وہ قومیں آگے ہیں جو اللہ کے قوانین کو مان کے چل رہی ہیں. تو اللہ کا قانون اتنا محکم اور اللہ اتنا بڑا عادل ہے کہ وہ کسی کو بھی جو نا اپنی پسند دی فیورٹزم نہیں کرتا، وہ بلکہ قوانین کے مطابق لے کے چلتا ہے، قوانین کے مطابق بات سننا چاہتا ہے اور فیصلے کرتا ہے قوموں کے بھی اور انسانوں کے بھی. تو یہ تھوڑا سا ایڈیشن تھا میری طرف سے اس میں. عمر بھائی آپ مزید بات کیجیے.
جزاک اللہ. ڈاکٹر فاطمہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے؟
جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ، آپ نے کافی اچھا بتایا الحمدللہ، اور فراز بھائی نے بھی کافی اچھی ڈسکشن کی ہے. اس میں فراز بھائی نے جو جہاں سے ڈسکشن شروع کی تھی، میں صرف اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے شاید کوسچن کیا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیوں کر رہا ہے ایڈریس قرآن پاک میں. تو اس کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی اللہ تعالیٰ کافی، ایک تو قرآن میں بھی ان کے اسکالرز کا ذکر کرتا ہے، اور بلکہ بہت شاید بہت اچھی طرح سے نہیں ذکر کرتا، کیونکہ اسکالرز کی ایک اپنی تھاٹ پروسیسز ہوتے ہیں اور وہ پھر اپنی اسکالرشپ میں بہت زیادہ جو ہے نا انٹینگلڈ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے علماء کا ذکر کرتا ہے، اور ابھی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو یہ قوم ہے ان کے اندر نالج کا اور بہت زیادہ ہے کہ کوئی بھی اگر نالج اویلیبل ہے تو وہ فوراً سے اس پہ ایک طرح سے جھپٹ پڑتے ہیں، اور ان کے پاس ریسورسز بھی اوور اے پیریڈ آف سینچریز ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے نیٹ ورکس ہیں. تو ان کو ہمیشہ سے شوق تھا، اور بہت کچھ انہوں نے اپنے جو ٹریڈیشن تھا اس میں قرآن کے آنے کے بعد، اور اسپیشلی جو قرآن کے بعد جو علماء نے بہت زیادہ کام کیا، انیشیل سینچریز میں مسلمان جو تھے وہ بہتر تھے، تو انہوں نے کافی کام کیا الحمدللہ. تو انہوں نے بہت زیادہ ٹریڈیشن جو ہے وہ اپنا تھرو قرآن اور تھرو اسلامک انیشیل جو ارلی ٹریڈیشن تھا اس کے تھرو ڈیولپ کیا ہے. اور بلکہ ایک بک بھی ہے، ایک جوئش آتھر ہے، میرے ذہن سے ابھی ان کا نام نکل گیا، لیکن لٹرلی ہی روٹ اے بک اباؤٹ کہ سویلائزیشن آف نالج، کہا اسلامک ارلی سویلائزیشن کو کہ اتنا زیادہ یہ نالج کے لیے ہیں، اینڈ دے لرنڈ الاٹ فرام دا ٹریڈیشن آف ارلی اسلام. تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا آج بھی میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی جو لیٹسٹ کہیں پڑھا تھا کہ آج بھی جو موسٹ ریڈ بک ان دا ورلڈ ہے وہ قرآن ہی ہے، بائبل نہیں ہے. حالانکہ کرسچنز بہت زیادہ ہیں اور بائبل بہت زیادہ ویسے بھی ایک لٹریچر کا ایک وہ سمجھا جاتا ہے نا، ایک کارنر اسٹون ہے بائبل. نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے اس کو لٹریچر کے لیے لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے لٹریچر کا. لیکن پھر بھی اگر ابھی بھی ہم سرچ کریں تو شاید چینج ہو گئی ہوں اسٹیٹسٹکس، لیکن موسٹ ریڈ بک ان دا ورلڈ جو ہے وہ ابھی بھی قرآن ہی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، और टाइम उसकी क्रिएशन है, तो वो उसको पता था कि लोग पढ़ते रहेंगे, तो अल्लाह ताला इस तरह से एड्रेस करता है। और तीसरा जन की बात है कि जन को जो है ना वो अच्छे तरीके से और बुरे तरीके से दोनों तरह से डिस्क्राइब किया गया है कुरान में। अभी फराज भाई ने भी ये बात, और जो ये आयत है इसमें आई थिंक कि सारी लाइफ जो हम जीते हैं वो सिर्फ एक इसी बेसिस पे जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन ले सकती है। तो जन जो है हमारा वो अच्छा या बुरा अगर होता है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमने अल्लाह ताला को मिलना है या नहीं, ये जो है ना सिर्फ इससे ही सिर्फ सारा फर्क पड़ता है। मतलब बाकी वर्ल्ड व्यूज की कोई हद नहीं है, मतलब इतनी ज्यादा फिलोसफीज हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म है कि हम चूज करते हैं हमारी चॉइसेस की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सबसे ज्यादा मकबूल है आई थिंक रिलीजियस फिलोसफी के बाद सबसे ज्यादा मकबूल एग्जिस्टेंशियलिज्म है कि हम खुद करते हैं, खुद ही अपने हाथों से सारा कुछ करते हैं। और उसके बाद निहिलिज्म है, और उसमें भी बंदा जब बहुत मायूस हो जाता है तो निहिलिज्म में चला जाता है कि कुछ भी मैटर नहीं करता। लेकिन अगर कोई चीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज जाती है तो वो सिर्फ यही है कि हमने अल्लाह के पास वापस जाना है और हमने उससे मिलना है। तो जिस मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे जो लोग होते हैं जिनका ईमान इतना नहीं होता स्ट्रांग, तो उनका दिन अच्छा गुजर जाता है अगर वो ये सोचें कि अल्लाह से मिलना है, और फिर वो अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं।
होप है ना असल
और
में।
अगर वो किसी दिन ये बात निकल जाए, या जैसे बंदा वो एक मायूसी की कैफियत में आ जाता है, या डे टू डे के जो चैलेंजेस होते हैं वो उनमें फंस जाता है, तो फिर लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, और फिर वो डायरेक्शन उसकी कहीं भी जा सकती है। फिर आप हर चीज छोड़ दें या किसी एक चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर लें, तो वो फिर मर्जी है, फिर आप क्या चूज करें और उसका क्या नतीजा निकले। लेकिन ये लाइफ चेंजिंग है मेरे ख्याल में कि अल्लाह ताला से हमने मिलना है। तो थैंक यू सो मच।
कुरान का जो नुजूल है या खुदा की जो ज़ात है वो एक एंटिटी है हमारी लाइफ का असल में, यानी कि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। असल में ये है कि खुदा की जो किताब है वो असल में उम्मीद है। कुरान खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, उम्मीद के बगैर कोई भी जो चीज़ है उम्मीद के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि जो शैतान है और दूसरी तरफ से रहमान है, दो रास्ते हैं ना, उसमें यही है कि एक उम्मीद का रास्ता है और एक नाउमीदी का रास्ता है, एक ख्वाहिशात का रास्ता है और एक हकीकत का रास्ता है। अल्लाह ताला की किताब नाजिल बुनियादी तौर पे मैं इसीलिए यही समझता हूँ कि अगर किताब नहीं होती और अगर अल्लाह की दावत वही की शक्ल में हमारे पास मौजूद ना होती, इंसान हक पे चलना इंसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि उम्मीद इंसान को चाहिए होती है लाइफ में। इंसान को तकलीफें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और फिर हम उसी खुदा से ताल्लुक लगा के ही दोबारा उठते हैं असल में। वरना किसी लोगों के लिए नाफे बनना जो वाला जो मामला है ना, वो नामुमकिन होता है और वो ज़ाहरी टिप टाप रह जाती है असल में।
जी बिल्कुल उमर भाई, आपने
तो
ये जो बात की इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जन जो है ना हमने खुद अपना डेवलप करना है। जैसे हम अपनी दूसरी हैबिट्स को या अपनी साहित्यों को डेवलप करते हैं, तो जन भी हमने खुद डेवलप करना है। और जन को डेवलप करने का जो तरीका है वो इल्म के ज़रिए है। जैसे हमें किताब मिली या कुरान मिला, तो इसके ज़रिए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। नबियों की डेवलपमेंट हुई, नबियों ने अपनी जमातों की डेवलपमेंट की, अकवाम की डेवलपमेंट हुई, और फिर वो जो जन है वो हमारा कन्वर्ट होता है हमारे अमाल के अंदर, और अमाल फिर नताइज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो जिस तरह का हमारा जन होगा उसी तरह हमारा अमल होगा। इसकी मिसाल सिंपल ये दे दें कि जब जंग भी होती थी नबियों के दौर में, तो उन्हें बताया जाता था कि आपने नदारों को या बुजुर्गों को या खवातीन को, उनको अटैक नहीं करना आपने, या यानी उनको फिर उनका जो जन अमल के जरिए पेश किया जाता था, उसमें भी इतनी जो ना इंसानियत की फिक्र होती थी कि उसमें भी अगर किसी चीज़ का आपको हतमी जंग की सूरत में फैसला करना पड़ता तो वो भी लिमिटेड होती थी। यानी उसमें भी इतनी रहमत होती थी कि जानवरों का ख्याल करना है, सिर्फ उनके खिलाफ लड़ना है जो आपकी बात को नहीं मान रही, आपके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, या आपकी बात को फुली तौर पर बगैर दलील के डिनाई कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी रहमत है जन, और हमें जो इल्म के जरिए डेवलप करना होता है और उसके मुताबिक हमारा जो अमल है वो भी तरतीब पाना शुरू करता है। अगर हमारा जन ही गलत होगा हमारा अमल भी गलत होगा, और अगर हमारा जन बेहतर होगा तो हमारा अमल भी बेहतर होता जाएगा और उसके नतीजे भी खुशगवार होंगे। और दुनिया में आज देख रहे जितनी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है उसमें किसी भी मजहबी जमातों का हाथ नहीं, बल्कि इंसानी जन का जो ना काम हो रहा है कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, और वो हमने खुद ही कुछ बातें सोच ली हैं और अल्लाह के साथ मंसूब कर दी हैं, तो वही बात आ जाती है जो हज़रत इब्राहिम वाली बात है कि वो अपने बाप और अकवा अपनी कौम को पूछते हैं कि आपने अल्लाह के साथ क्या इफ्क बांधा हुआ है कि जो अल्लाह के साथ मंसूब है बातें वो ऐसे नहीं है जैसे हम सोचते हैं, बल्कि वो अल्लाह अपनी किताबों के जरिए नबियों को बताता है और नबी उसको डेलीगेट करते हैं कौमों तक। तो ये बड़ा एक प्रोसेस है जिसको हम किताब या कुरान या दीगर सहाइफ और दीगर कुतुब के जरिए तय करते हैं, और इसमें जो एक बड़ी बुनियादी शर्त है वो ये है कि हम अल्लाह के इस पैगाम को समझें कि ये अमन कायम करने के लिए नाजिल हुआ है, ये इंसानों को गुलाम बनाने के लिए या महकूम बनाने के लिए नाजिल नहीं हुआ। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो फहम है कितना आसान हो जाता है कुरान का या किसी भी किताब का, और हम कैसे चीज़ों को बेहतर अंदाज में परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया,
बहुत आपने एक्सप्लेन किया। असल में एक चीज़ मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगा, वो ये है कि इलम की मौजूदगी तभी दलालत देती है किसी अच्छाई की, कि वो प्रैक्टिकली असल में ये ऐसा ही है कि आपके पास एक थ्योरेटिकल चीज़ है, क्योंकि इलम अपनी ज़ात में थ्योरी है, लेकिन वो इलम जब हिदायत बन के इंसान के अमाल में आता है, यानी मैनुअल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो अगर इम्प्लीमेंट होती हैं लाइफ के अंदर, ऐसा ही है कि उसके ऊपर जब वो मशीन चलती है उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, तो तभी जाके प्रोडक्ट डेवलप होता है, वरना वो सिर्फ थ्योरी ही होती। तो नाफे इलम की तारीफ यही है कि अगर अगर तो वो इलम हिदायत बन के जिंदगी में ढल रहा है तो वो असल में असल इलम है, अगर वो सिर्फ थ्योरी है तो वो किसी फायदे का नहीं है, क्योंकि इंसान जब तक तजर्बात नहीं करता ना अपने गिवन इलम के ऊपर, तब तक वो यकीन के दर्जे पे नहीं पहुंचता। यकीन का दर्जा इसलिए अल्लाह ताला ने जो फराइज रखे हैं हमारे लिए, वो असल में बेसिक दर्जा है अल्लाह के हुक्म को मानने का बुनियादी, कि कम से कम तो ये करना है। अब इससे आगे जो बढ़ता है वो फिर उसका अपना दर्जा है। एक तो ये बात हुई कि रुजू इल्लल्लाह जो है ना, यहाँ पे जो अगर आप आयत के अंदर हम देखेंगे ना, राजीऊन का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है इसमें राज रजू ऊ नहीं कहा हुआ बल्कि राजीऊन, तो ये असल में मजीद तशदीद लेके आता है इस चीज पे, यानी उसमें के अंदर कि वो पक्के इस पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह की तरफ हम रुजू करेंगे। तो ये असल में इलम का ही, जिस तरह जन की बात की है ना, ये इलम का ही वो दर्जा है कि जो इंसान को ये यकीन दिलाता है कि मैंने रुजू करना है। और आपने जो दूसरी बात की थी जो तजर्बात हैं, उसके लिए फिर जरूरी है कि इंसान अपने माहौल का ख्याल रखे। जिस तरह आपने फरमाया ना कि इलम के वसीले होते हैं ना, कुछ उनके माखज होते हैं जहाँ से इलम इंसान हासिल करता है, वो किताब से होता है, वो लोगों के साथ डिस्कशन से होता है, वो तजर्बात से होता है, मुख्तलिफ उसके वसीले आप टीवी से हासिल कर रहे होते हो, सोशल मीडिया से, यानी चीज़ें आ रही हैं, आप उनको हजम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई एक बात है कोई दूसरी बात है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब ये सही है वो सही है, तो जहाँ पर आपको यकीन नहीं होता वहाँ पर आप उसी जन से एक काम ले रहे होते हैं जो आपका पहले माइंड सेट बन चुका था कि यार ये बात ठीक है। बेशक वो फेक कोई खबर होगी, लेकिन आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि ये हो सकता है जी, क्योंकि ये तो बिल्कुल मेरे से मैच कर रही है। तो मैं कहता हूँ कि इंसान को अपने दोस्तों की सिलेक्शन में बड़ा ही केयरफुल होना चाहिए, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिस कम्युनिटी के साथ आपका ताल्लुक है वो असल में, या जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिनको सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो असल में आपको क्या सिखा रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें आपको फीड कर रहे हैं, क्योंकि जो फीडिंग होती है ना ये इंसान के अंदर उस जन को डिवेलप कर रही होती है कि या तो आप मायूसी की तरफ जा रहे होंगे या आप उम्मीद की तरफ जा रहे होंगे। तो अगर इंसान मायूसी की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है, इस तरह कुरान ये कि वो असल में शैतान का दोस्त बनता चला जा रहा होता है, क्योंकि इंसान को जो चीज़ ड्राइव करती है वो उम्मीद है, जिंदगी के अंदर कामयाबी की तरफ लेके जाती है, यानी दुनियावी और उखरवी दोनों कामयाबी जो मोमिन का मेराज है ना वो है।
जी बिल्कुल, इसमें एक आपने जो अभी बात की ना सब्सक्रिप्शन की, उसके वजह से कि जन को हम आज यूं भी समझ सकते हैं कि जैसे एआई में हम देखते हैं कि अब वो हमारा बिहेवियर जो ना डिटेक्ट करके हमें वही वीडियोस बार बार दिखाते हैं जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर होता है, उसमें स्पोर्ट्स का भी हो सकता है, फिल्म का भी हो सकता है, राइटर्स का भी हो सकता है, पॉलिटिशियंस का भी हो सकता है, यानी जो वो हमारा एक बिहेवियर डिटेक्ट करता है वो हमें उसी किस्म की वीडियोस या उसी किस्म के जो ना लोग सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन के देना शुरू कर देते हैं। तो जन भी इसी तरह काम करता है कि जब हम अच्छा जन करते हैं तो अल्लाह ताला हमें अच्छे लोगों के पास भेजना शुरू कर देता है, या अच्छे लोग हमारी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम हमारे से होना शुरू हो जाते हैं, या हम अच्छे कामों में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जन भी ऐसे ही काम करता है कि हमारा जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो ग्रो होता है उसके साथ फिर अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है या हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हमने उसको अपने अंदर डिवेल्प किया होता है। तो अल्लाह ताला ये खुद नहीं कर रहा होता है बल्कि हम खुद इसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
हाँ ऐसा ही है, ये जो इंसान को आज़ादी दी है ना अल्लाह ताला ने चुनने की, ये असल में बात फिर वही आ जाती है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को हिदायत दे देता है, कुछ को नहीं देता। तो वो आपके जन की कमाई होती है असल में, और वो जन आपने खुद कमाया होता है असल में, वो जन कोई बाहर से नहीं आ रहा होता है। ये कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, आप कौन सी डिस्कशंस जो है ना आपको इंटरेस्ट असल में कर रही हैं। तो अगर मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिन बैठकों में खुदा का या खुदा की याद ना हो ना, उन बैठकों में नहीं बैठना चाहिए इंसान को। असल में मजाक होना चाहिए, गपशप होने चाहिए, लतीफे भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उस बैठक में एक वक्त खुदा की याद का भी ज़रूर होना चाहिए, बेशक 5 मिनट का क्यों ना हो। तो अगर हम उन बैठकों में बैठते हैं कि जो सिर्फ लायानी किस्म की गुफ्तगू को ही जो है ना पसंद करते हैं, और जब आप खुदा की बात शुरू कर देते हैं तो वो मुंह बसोरना शुरू कर देते हैं या आपको रोकते हैं, तो बेहतर यही है कि उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दें।
सूरह साफ की आयत नंबर जो 87 मैंने यहाँ पे बताई, जब मैंने ये आयत पढ़ी तो ये एक आई ओपनिंग थी कि हजरत इब्राहिम अपनी कौम से और अपने वालिद से कहें, फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, कि तुम्हारा रब्बुल आलमीन की तरफ जन किस किस्म का है, कि उसी किस्म का, यानी कि वो बता रही हैं बातों के अंदर भी, इज्म के जरिए भी, कि उसी किस्म का सलूक आपके साथ होगा, उसी किस्म के आपके मामलात तय होते जाएंगे। और ये एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है हमारे लिए भी कि हमने अपने जन को ग्रूम करने, और जन जो हमारा वो हमारा इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो है ना वो जन है।
इस तरह की एक हदीस मुबारक भी है कि अल्लाह ताला मोमिन के साथ वही हिसाब करता है जिसका वो जन रखता है। देखिए किस तरह चीज़ आपस में जुड़ती हैं। आमतौर पे जो लोग जन को कम्प्लीटली ग्रेस्प नहीं करते हैं तो वो समझते हैं कि यार मैं सोच लूँ बदल ऐसा ना केड़ी गल है जी। इस तरह थोड़ा होता है कि आप कोई, मैं इस तरह मैंने मिसाल दी थी ना कि ये नहीं होता कि आप बटन ऑन और ऑफ कर लोगे, कि मैं नमाज के बाहर जो हूँ ना वो कुछ और हूँ और नमाज में खड़े हो कि मेरे अंदर खशियत कायम हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। स्विच ऑन ऑफ नहीं होता, ठीक है आपके आपकी जो ज़ाहिरी फ़राइज़ है वो तो पूरी होंगे, लेकिन आप खशियत वाली नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो फिर जब हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं फरमाते या हमारी बात नहीं सुनते, तो फिर बात तो ये है ना कि अल्लाह तो कह रहे हैं ना कि आप खशियत लेके आओ अपने नमाजों में, तो खशियत तारी तो नहीं की जा सकती ना। जिस तरह हम ये कह रहे हैं बार बार कि खशियत तो असल में आपके जान से ड्राइव फॉर्म है, तो हमने अपने गुमान के ऊपर होमवर्क करना है और यही टारगेट है इंसानों का। सवाल आ रहा है कोई जी, ये असल में हमारा वक्त भी अब मुकम्मल हो रहा है, 5 मिनट रह गए हैं, क्योंकि अगर हम एक सवाल ले लेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि हमारा काम लंबा हो जाए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल मैं डाल लेता हूँ इसमें जो आए हुए हैं, और मुमकिन है कि फिर हम अगली दफ़ा, इस दफ़ा उमर भाई हमारे साथ नहीं है, अगली दफ़ा आएंगे तो वो भी फिर उस पर कुछ कस करेंगे, हम दोबारा उसको लेंगे। बड़ा ही अहम सवाल है, पिछली दफ़ा मैंने दिखाया भी था आप लोगों को कि अल्लाह ताला ज़मीन पर जुल्म को क्यों नहीं रोकता, जंगें और नाइंसाफियाँ क्यों नहीं ख़त्म होती, क्या ये इस बात की दलील नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है?
ये बड़ा कॉमन सवाल है आजकल, बहुत आम हुआ है।
जी आप इस पे राय देंगे?
देखिए ये सवाल जो ना जितना अहम है इस पे जवाब भी थोड़ा तफसीली बनता है, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको शॉर्ट करने का।
थोड़ा सा आज कवर करते हैं ना जितना होता है, फिर अगली दफा दोबारा।
इसमें मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करना चाहूंगा कि जैसे हम बात करते हैं कि दिन और रात मैकेनिकली काम कर रहे हैं, दिन अपना एक सेट पैटर्न के साथ आता है, रात अपने एक सेट पैटर्न के साथ आती है, और हमने साइंस के जरिए यह पता चला दिया हुआ है कि आइंदा आने वाले 500 या 1000 सालों में टाइम ड्यूरेशन ऑफ डे या ड्यूरेशन ऑफ नाइट कितना होगा, तो हमने उसे समझ लिया। तो अब हम ये नहीं कह सकते, या मतलब अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं क्योंकि इस पैटर्न सेट है तो ये कोई करने वाला नहीं है, बल्कि ये चीज़ें सेट हुई हुई हैं, इसके पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है। तो बड़ा ईजीली लोग कह देते हैं कि ये तो सेट हुआ हुआ काम, दुनिया सेट हुई हुई है, तो दुनिया में किसी का वजूद नहीं है खालिक का, बल्कि ये सेट पैटर्न है जो किसी वजह से हो गया है, तो अब ये चलता आ रहा है। अच्छा, इसको अब एआई के दौर में मैं समझता हूँ कि हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या खुदा मौजूद है या नहीं। जैसे अब रोबोट जो है हमारी ईजाद है, इंसानों की ईजाद है, अल्लाह ताला ने जो इल्म हमें दिया या इस कायनात में जो इल्म मौजूद है उसके जरिए हमने एक इल्म सीखा और रोबोट बना दिए। आज रोबोट वही काम कर रहे हैं जो हम उसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन कल को रोबोट उठ के ये कहता है जी मैं तो खुद बन गया हूँ, तो हमें कैसा लगेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, इसको तो मैंने बनाया है, इसको तो ये भी नहीं पता था कि इसने बोलना कैसे है, इसको तो ये भी नहीं पता था इसने सोचना कैसे है, इसको तो ये भी नहीं पता था कि इसने बात कैसे करनी है, इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग की हुई है, ठीक है। तो आज ये रोबोट उठ के मुझे ये बात कर रहा है तो हमें हंसी आएगी। तो अल्लाह का मामला भी ऐसे ही है, वो कहता है कि मैंने इंसान को नुतफे से पैदा किया जबकि ये मौजूद भी नहीं था, यानी मेरा हमारा इंसानों का मादा भी दुनिया में मौजूद नहीं था, और नुतफा जब मिलता है तो फिर इसका मादा डिवेल्प होता है। तो कहता है मैंने इंसान को बगैर किसी मादे के दुनिया में पैदा किया और उसको बोलना सिखाया, उसको रहना सिखाया, उसको बात करनी सिखाई, उसको इल्म अता किया, और मेरा जो इल्म है वो कहता है वो कायनात के अंदर मौजूद है। अब चूंकि वो मौजूद इल्म जो है वो पैटर्न के अंदर मौजूद है, यानी जो कायनात के अंदर जो इल्म है वो एक सेट पैटर्न में काम कर रहा है जिसे हम एक्सटर्नल वर्ल्ड कहते हैं, उसमें हमें कोई भी खामी नजर नहीं आती। उसमें अल्लाह ताला कहता है कि अगर दो इलाह या ज्यादा इलाह मौजूद होते तो तुम इसमें भी तबाही देखते या इसमें भी आपस में तसादुम देखते, यानी कायनात में हमने देख लिया कि एक सेट पैटर्न है, वहां पे हम ये कह देते हैं, मतलब लोग भी ये कहते हैं कि ठीक है पीछे कोई एक फिनोमिना काम कर रहा है जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी और सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम कर रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू होती है? जब हम इंसानों की दुनिया में आते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जितने भी सवाल होते हैं हमारे वो इंसानी दुनिया के मुताबिक है। हम ये कभी ये नहीं कहते कि सूरज ने चांद पे ज्यादती कर दी, चांद ने सितारों के साथ जुल्म किया, बादल ने आज हवाओं को थप्पड़ मार के नीचे फेंक दिया, या बारिश ने आज जो ना बादलों की बात नहीं मानी। ये सेट पैटर्न है, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि देयर माइट बी समवन जो कि वहां बैठा एक मैकेनिज्म कुछ चला रहा है, लेकिन इंसानों की दुनिया के अंदर जब हम आते हैं तो हमें ये समझने की जरूरत पड़ती है कि ये सेट मैकेनिज्म क्यों नहीं काम कर रहा। उसमें जो सबसे पहली चीज है हमें समझने की है वो ये है कि इंसान जो है वो मजबूर नहीं पैदा हुआ। जैसे ये एक सवाल भी रखा गया कि इंसानों को तकदीर का पाबंद किया गया, तो इकबाल भी इसको कहते हैं ये नबातात और जमातात जो हैं वो तकदीर के पाबंद हैं। मोमिन तो अपनी तकदीर खुद लिखता है, जिसको वो कहता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अच्छा, अब चूंकि हम कहते हैं कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अल्लाह ताला के इज़्ज़म से बाहर थी, अल्लाह ताला के इज़्ज़म के अंदर मौजूद है। हम जो भी कर रहे हैं एक्ट वो अल्लाह ताला को पहले से भी पता है, लेकिन वो हमें फोर्स नहीं कर रहा वो एक्ट करने के लिए, जिसको अल्लाह ताला कुरान पाक में भी बयान करता है कि मैं चाहता तो इंसानों को एक ही डायरेक्शन के ऊपर पैदा कर देता, सब भी ईमान वाले हो जाते या सब भी कुफर वाले हो जाते, तो कहता मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं किया? क्योंकि इंसानों की आज़ादी जो है ये सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा की, और इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको सोचने की आज़ादी है, और अल्लाह ताला इतना बड़ा लिबरल है। मैं मतलब आज की जो जो लैंग्वेज है उसमें मैं बात करूं कि अल्लाह ताला इतना बड़ा लिबरल है, वो कहता है कि जिसका जी चाहे ईमान ले और जिसका जी चाहे कुफर करे, यानी अल्लाह ने इतनी बड़ी आज़ादी दे के इंसान को खुला छोड़ दिया कि आप जो चाहे ईमान ले आए जो चाहे कुफर करे। तो अब ईमान वाले जो होंगे वो दूसरों पे जुल्म नहीं करते। अगर आज हम देखते हैं कि दुनिया में जुल्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कि हमारे अंदर वो लोग ज्यादा मौजूद हैं, वो ज्यादा इन पावर हैं जो ईमान वाले नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जो ईमान लेकर आएंगे वो इंसानों के लिए उसी तरह रहमत होंगे जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, उसी तरह वो भी रहमत के बाइस बनेंगे। और जो ईमान वाले नहीं है वो क्या करेंगे? वो लोगों को भूखा रखेंगे, लोगों को मोहताज रखेंगे, लोगों को गुलाम रखेंगे, लोगों के साथ नाइंसाफी करेंगे। वो सारी चीजें आप देखें सूरह बनी ये बनी इसराइल के किस्से में हम पढ़ते भी आ रहे हैं कि वो हक और बातिल को मिक्स कर देते हैं, वो अहद तोड़ते हैं, वो आपस में दुश्मनियां पालते हैं, वो तफरके करते हैं, तफरीक करते हैं, कौमियतें बन जाती हैं, मैं जर्मन हूँ, ये पाकिस्तानी है, ये अमेरिकन है, ये सारा जुल्म हो रहा है, लोगों को लोगों से जुदा किया जा रहा है। तो जब हम देखते हैं कि जो लोग अल्लाह के बताए हुए कवानीन पे नहीं चलते तो वहां पे अल्लाह का इनकार हो जाता है, और वहां पे सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला अब क्यों नहीं इसको रीशिफ्ट कर रहा। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अल्लाह ताला इंसानों की दुनिया के अंदर इंसानों के हाथों से फैसले करवाता है, वहां पे वो अपने कवानीन नाफिज नहीं करता खुद से, बल्कि कवानीन पेश करते हैं, जो लोग उसको फॉलो करते हैं वो अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, वो उसके मुताबिक नतीज देते हैं, जो उसको फॉलो नहीं करते वो अल्लाह ताला कहता है ये तागूत के बंदे हैं, अब ये तागूत के लिए काम कर रहे हैं, अब ये मेरे बंदों से हटके اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے تاغوت کا کام کر رہے ہیں، اور اس کا نتائج یہ نکلے گا، یہ دنیا میں فساد بھی دیکھیں گے، دنیا میں قتل و غارت بھی دیکھیں گے، دنیا میں ہر طرح کے معاملات غلط ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے رب نہیں مانا یا میری بات نہیں مانی. اللہ کو رب منوانا بھی ہمارے سے مقصود نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی بہتری اس میں چھپی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے آگے، اللہ کی تعلیمات کے آگے سر نگو کریں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھی رحمت ہے اور ہم پھر کائنات کے لیے رحمت بن جاتے ہیں. تو اس کا جو میں جو سمجھوں ابھی شارٹلی وہ اتنا ہی ہے کہ انسانوں کی آزادی ہے یہ جو ایک نعمت ہے، اب اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے وہ ظلم پیدا کر رہا ہے. ظلم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو پیدا نہ کریں. اور ہم کیسے پیدا کرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، قرآن کے جو اصول، جو قوانین جو کائنات میں موجود ہیں ان سے ہم روح گردانی کریں گے تو وہاں ظلم پیدا ہوگا. بلکہ ظلم کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے، میں یہ بات کر کے ختم کروں گا، کہ نیچرل چیز کے اندر ان نیچرل فینومینا کو پیدا کرنا جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے. جیسے دیسی مرغی کی جگہ برائلر نے دے دی تو یہ ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے. جیسے دیسی گھی کی جگہ بناسپتی گھی نے دے دیا تو یہ ظلم ہو گیا. یعنی ایک نیچرل فینومینا کو ریپلیس کرنا ان نیچرل فینومینا کے ساتھ، یہ ظلم ہے. اب جو یہ ان نیچرل فینومینا پیدا کر رہا ہے بیسیکلی ظالم وہ ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تو نیچرل فینومینا دے رہے جس میں وہ کہتا ہے شفا ہے اور رحمت ہے تمام کائنات کے لیے. اب جب ہم اس فینومینا کو چھوڑیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ کا انکار کر رہے ہیں. تو اللہ اپنے وجود کو منوانے کے لیے ہم سے کوئی زبردستی نہیں چاہتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میرا وجود آپ کے زندگی کے نتائج کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ مجھے مانیں گے تو آپ انسانوں میں یکجہتی دیکھیں گے، انسانوں میں اتفاق دیکھیں گے، اور رزق کے جو ذرائع ہیں ان میں برکت دیکھیں گے. لیکن اگر آپ یہ سب کچھ جٹلا دیں گے تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا، فرق انسانوں کو ہی پڑے گا، اور وہ فرق ہمیں پڑا ہوا ہے آج. جی عمر بھائی بہت شکریہ،
دست آپ نے ماشاءاللہ بیان کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے سوال ہے، آپ اس پہ کچھ
یہ کافی مشکل کوسچن ہے. ماشاءاللہ فراز بھائی نے کافی اچھا اس کو بتایا ہے. اچھا میری خود بھی ظاہر ہے کہ جب انسان اتنی زیادہ تکلیفیں دیکھتا ہے دنیا میں اور جنگی صورتحال دیکھتا ہے جو کہ بڑھتی جا رہی ہے ایکچولی، تو انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. لیکن جو آئی تھنک جو سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ سچویشنز ہوتی ہیں ان کے جو کبھی کبھار اگر ہم ان کی ڈیپتھ میں جائیں تو آنسرز آئی تھنک سمپل ہوتے ہیں. تو میں کوئی اسکالر نہیں ہوں لیکن میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج دیا ہے، اور اب جتنے بھی ہم ہیں ہماری اپنی اپنی سچویشن میں ہمارا امتحان چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو میں دنیا میں جو ہے نا پاور دے کے آزماتا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے اور بہت سوں کے پاس نہیں ہوتی، اور یا پھر ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پاور ہوتی ہے، کہ جیسے ہم نے کوئی کام کیسے کر لیا، یا جیسے ہم نے کسی کو ہنس کے دیکھا کہ نہیں، یا سلام کیا یا نہیں. لیکن کچھ لوگوں کے پاس بہت بڑے بڑے فیصلوں کی اور بہت بڑی بڑی سچویشنز کو چینج کرنے کی پاور ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، لیکن آئی تھنک ہر ایک کا امتحان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اس میں اس کو آزما رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات بہت حد تک ہمیں ہمارے حوالے کر دیے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بس ہو گیا ہے. کبھی کبھار ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ چیز نہیں ہو سکتی، اور مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی انٹروینشن کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے امر پہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ غالب ہے. جو اس نے کرنا ہے، جیسے اس نے کرنا ہے وہ کر دے گا. ہم صرف انسٹرومینٹس کی طرح جو ہے ہیں اس دنیا میں، اور ہمارا وہ امتحان ہے. تو باقی جب جو لوگ جن پہ ظلم ہو رہا ہے اور جن کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے، ہم اٹھتے نہیں ہیں، تو وہ ہم اپنے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں اور وہ اپنے امتحان میں پاس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو صبر ہی کر رہے ہیں. جتنے لوگوں کو بھی میں نے یہ جو ریسنٹ جو جنگی صورتحال ہے، جو کلپس وغیرہ آج کل ہمارے سامنے آتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ ان سے زیادہ ایمان تو کسی میں بھی نہیں ہے. مطلب ہمیں ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہم تو بفر جاتے ہیں، لیکن ان کے منہ سے ہمیشہ الحمدللہ اور حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل کے علاوہ میں نے کبھی کسی ویڈیو میں یا کسی کلپ میں میں نے کچھ اور نہیں دیکھا. تو وہ تو پاس ہو رہے ہیں اپنے امتحان میں، کیونکہ جس سچویشن میں بھی ہیں انہوں نے اللہ پہ یقین نہیں چھوڑا یا ایمان نہیں چھوڑا. لیکن جو لوگ پاور رکھتے ہیں، اور بے شک وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس پاور ہے سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی، اور وہ نہیں کر رہے تو وہ اپنے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں. اور اس دنیا نے ایک دن، یہ تو سائنس اور ریلیجن جو ہے وہ اس بات پہ تو یونیفائڈ ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ دنیا ایک دن اینڈ ہو جائے گی، اور صرف جو کچھ چیزوں پہ جن پہ نہیں سب لوگ ایک، وہ یہ ہے کہ کیا اس کے بعد ہم اپنے اعمال کا देंगे, हिसाब हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वही अभी हम जो पहले बात कर रहे थे वो इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है कि जो लोग, जिनको पता है कि हमने अल्लाह के सामने जाना है और हमने अपने अमाल का जवाब देना है, जिस भी सिचुएशन में हम हैं, जो भी हमारी पावर में चीज है, किसी को पानी पिला देना है या कोई लिटरली कोई जंग रुकवाना है या कोई वेपन्स की कोई डील बंद करना है, तो उस हिसाब से अगर हम, हमें पता है कि हमने अकाउंटेबल हैं हम अपने लिए, अपने अमाल के लिए, तो हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा। और अगर हमें, हम यही कर रहे हैं कि नहीं यार यही दुनिया है, इसमें जितना मुझे फायदा हो सकता है मैं ले लूं, उसके बाद मेरी जनरेशन फायदा लें, जितने भी साल हैं जो साइंटिस्ट कहते हैं, अच्छा इतने मिलियन ईयर्स रह गए हैं या जो भी रह गए हैं, तो वो फिर हमारा बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो फिर जाहिर है कि हम सारी पावर और सारी मालो दौलत हर चीज हम कंसोलिडेट करेंगे। तो आई थिंक हम सबका इम्तिहान चल रहा है और अल्लाह के पास हम सबने जाना है। और मैं तो ये कहती हूँ अक्सर कि जितनी कम पावर है शुक्र है, उतना ही हमारा इम्तिहान भी जो है ना आसान है। जिनके पास पावर बहुत है उनकी, उनका इम्तिहान भी बहुत सख्त होगा। और अल्लाह ताला बहुत ये आता है कुछ ट्रेडिशंस में, कुछ उसमें अहादीस में, कि जो बादशाह है और जो पावर वाले हैं उनका हिसाब भी फिर बहुत सख्त होगा। और अगर वो अच्छे हैं तो फिर वो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है बहुत ज्यादा पावर हो के भी सीधा रहना, अच्छे इंसान की तरह रहना। बाकी आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। आमीन सुमामीन। थैंक यू।
माशाल्लाह, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं आप लोगों ने कि मैं भी कमेंट करूँ। इसका वन लाइनर आंसर तो यही है, जिस तरह आप लोगों ने बात की उसको खुलासा अगर मैं दूं, और वही बात है, इंसान एक शऊरी तखलीक है अल्लाह ताला की। इंसान में और एक पत्थर में फर्क है, एक तो शऊरी तखलीक है और दूसरा ये है कि ये दुनिया जो है उस पर बनी नहीं है सूरत में कि यहाँ पे अच्छे का हमेशा अच्छा बदला मिलेगा और बुरे का बुरा मिलेगा। बदले का मकाम आखरत है। असल में अमूमन ये सवाल वहीं से आता है जिन लोगों को आखरत पे ईमान का प्रॉब्लम है। जिस शख्स को आखरत पे ईमान है उसको ये सवाल कभी नहीं चुभेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो भी मामला करता हूँ अपने शऊर से करता हूँ, ठीक है, और मेरे फैसले जो है ना वो मेरी तरजीहात किताबें हैं, ठीक है। तो इंसान को उसकी तरजीहात या उसके गुमान का सिला मिलता है, जिस तरह गुमान को हमने पहले डिफाइन किया है। तो ये शऊरी तखलीक जो है उसका तो इम्तिहान तो अल्लाह ताला ने लेना है। जिस तरह डॉक्टर फातिमा ने कहा कि असल में जो नेमत अल्लाह ताला ने दे दी है, नेमत को भी हम लोगों ने पीछे डिफाइन किया था कि असल में तो नेमत अता होती है, और अता नेमत कब बनती है कि उसमें हिदायत जब शामिल हो जाए तो वो नेमत बन जाती है इंसान के लिए। तो वो जहमत बनती है या जलालत बनती है कि जब उससे हिदायत निकल जाए असल में। तो वो जिस तरह फराज भाई ने कहा था कि जो जुल्म का मामला है और जो फसाद का मामला है, मैं फसाद ऐड करूंगा साथ इसके साथ, कि जुल्म फसाद जो है वो तो होगा जमीन के ऊपर। जिनको ताकत अल्लाह ताला ने दी हुई है खुली, वो खुली छूट है उनके लिए कि वो, किसी के पास 50 साल हैं, 40 साल हैं, 60 साल हैं, हर इंसान के पास, किसी के पास 80 साल होंगे, 100 साल हो जाएंगे, कितना जी लेगा। तो ये है कि अल्लाह ताला ने जिस बुनियाद पे ये कायनात हमारी जिंदगी को तख्लीक की है ना, वो कुरान में बिल्कुल वाजे है। और अल्लाह ताला बेशक मदद करता है इंसानों की, और उसकी एक मदद ये भी होती है कि आपको सब्र अल्लाह ताला इतना अता कर दे कि आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दो कि मुझे, अगर मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो वो असल में मेरे लिए नेकियों का में इजाफा कर रहा है। देखें, ये मार्फत का वो दर्जा होता है जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था ना, कि जब आपको खुदा की मौजूदगी का यकीन हो और आखरत का यकीन हो जाए तो फिर आप लोगों के दुख से और लोगों की तकलीफ आपको तकलीफ नहीं देती, क्योंकि आपको पता है कि जिसने, जो तकलीफ देने वाला है उसने तकलीफ देनी है। असल में मेन चीज ये है कि आई हैव टू पास दोस 10, 15, 20 ईयर्स विच इज लेफ्ट एट मोस्ट फॉर मी, ठीक है ना। और अच्छे वक्त का इंसान करता, फिर अल्लाह ताला इंसान के दिन बदल भी देता है असल में, और फिर अच्छा वक्त भी इंसान के पास आता है। तो इंसान को फिर वो बुरा वक्त याद रखना चाहिए। ये मोमिन की निशानी होती है कि वो अपनी तकलीफ वाले मामले को याद रखता है फिर। तो ये अच्छा, माशाल्लाह इसका हो गया है और वक्त भी हमारा पूरा हो गया। हम लोग, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग कोई इसमें मजीद कमेंट करना चाहते हैं तो वेलकम, और वरना हम फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को खत्म करते हैं।
अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हमें अल्लाह का
हाँ
जो उसका जो तसव्वुर है उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह का तसव्वुर इंसान अपने जहन से नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि हमें तो अल्लाह की डायमेंशंस का इल्म नहीं है। तो इसलिए अल्लाह का जो तसव्वुर है वो उसकी किताबों में जो मौजूद है, जो अल्लाह ने बार बार पेश किया है, वो बड़ा जरूरी है कि उसको हम हर रब पढ़े, खुद समझे, ये नहीं कि मैंने क्या कहा है, उमर भाई ने या भाभी ने क्या कहा है, ये नहीं, या किसी और आलिम ने क्या कहा है, हम खुद उस तसव्वुर से आगाही हासिल करें कि एक एक लफ्ज़ जो अल्लाह ताला फरमाता है ना, हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्लहु आलिमुल गैबी व शहादा, और इस तरह बहुत सारी आयात हैं, तो वो एक एक लफ्ज़ अल्लाह के तसव्वुर को निखार के पेश करती हैं, और जब ये सही तसव्वुर पैदा होगा तो हमारे ये सवाल खुद ब खुद छट जाएंगे हमारे जहनों से, और हमें इनके सारे जवाब मिल जाएंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला हमें इस किताब को, कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे जो मुज़ाकरा चल रहा है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हम जो एक घंटा हर इतवार को बैठते हैं यहाँ पे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी वक्त
बहुत
निकालते हैं।
शुक्रिया अमर भाई,
इंशाल्लाह
आपने ये मौका में
अल्लाह ताला
फराहम किया,
हमारे घरों में।
जजाकअल्लाह खैर।
सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और जो जो लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग माशाल्लाह व्यू कर रहे हैं।
सबका बहुत
बहुत
शुक्रिया
बहुत
जो
शुक्रिया आप
ज्वाइन कर
लोगों
रहे
का
हैं,
कि आप लोगों ने वक्त
बहुत
निकाला।
शुक्रिया जी।
हमें दुआ में याद रखें।
अस्सलाम वालेकुम।
सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।